नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। राजधानी के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण अग्निकांड में 9 लोगों की मृत्यु। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने घटना पर शोक व्यक्त किया। दिल्ली में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ी। मुख्यमंत्री ने नई चालान निपटान प्रणाली की घोषणा की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस पर दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। श्री संधू ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। उपराज्यपाल ने बताया कि अधिकारियों को घायलों की सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता प्रदान करने को भी कहा गया है। श्रीमती गुप्ता ने दुर्घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ी है। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और दुर्घटना को हृदय विदारक बताया।
लगभग पहली कॉल जो है पुलिस को 3:47 में मिली और 3:52 पे पहली फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है। लगभग 14 गाड़ियां हैं जिन्होंने पूरी आग को काबू करने का काम किया है। 20 लोगों की जान बचाई गई है और 9 लोग इसमें हताहत हुए हैं। उनके परिवारजनों से भी मिला हूं और जो दृश्य है वो बड़ा हृदय विदारक है। अब जांच की जाएगी। हमारे लिए प्राथमिकता यह है जो लोग घायल हैं उनको सही इलाज मिल जाए और जो नुकसान हुआ उसकी कैसे भरपाई हो।
इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, स्थानीय विधायक संजय गोयल, पार्षद पंकज लूथरा और शाहदरा जिला अध्यक्ष दीपक गाबा ने भी आज सुबह पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्रियों ने भी इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव नई दिल्ली में इसका उद्घाटन करेंगी और उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि सुरक्षा की शपथ दिलाई जाएगी। दिल्ली में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई डिजिटल और समयबद्ध चालान निपटान प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। नई प्रणाली के अंतर्गत अब हर चालान का निपटारा तय सीमा के भीतर करना अनिवार्य होगा।
इस निर्णय के अनुसार चालान मिलने के बाद 45 दिनों के भीतर भुगतान या चुनौती देनी होगी, अन्यथा उसे स्वतः स्वीकार माना जाएगा। इसके अलावा चालान को अदालत में चुनौती देने के लिए पहले 50% राशि जमा करना अनिवार्य होगा। इसके विपरीत समय सीमा समाप्त होने पर वाहन को अयोग्य के रूप में चिन्हित कर दिया जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन पंजीकरण से जुड़े सभी कार्य रोक दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष में 5 या उससे अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा श्रीमती गुप्ता ने कहा कि चालान की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल निगरानी में रहेगी और कैमरों तथा ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से चालान भेजे जाएंगे। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि ऑनलाइन चालान 3 दिनों के भीतर और फिजिकल नोटिस 15 दिनों के भीतर संबंधित व्यक्ति तक पहुंचा दिए जाएंगे। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक बैंक अधिकारी भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने फर्जी ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से हाई रिटर्न का लालच देकर 45 लाख से अधिक रुपए की ठगी की है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि उनके योगदान से सभी क्षेत्रों में नवाचार और विकास को गति मिलेगी। श्री मोदी ने उनके नए कार्यकाल के बेहतर उपयोगी और प्रभावशाली होने की कामना की। कैबिनेट सचिवालय ने राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर अनिया की नियुक्ति के बारे में जानकारी दी। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा में शामिल सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र करुणा, सेवा और जीवन भर सीखने की प्रतिबद्धता का क्षेत्र है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी की हरियाली ही इसकी जीवन रेखा है और इसकी सुरक्षा सभी की साझा जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी दिल्ली हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
हमारी दिल्ली में पेड़ कटने से बचाना होगा, तो बारिश का मौसम होगा, तो इस बार दिल्ली शहर में हम उतने पेड़ लगाएंगे जितने आज तक कभी किसी ने ना सोचा होगा ना लगाया। आज के इस मौसम में क्या कर, आज हमको जो लगे हुए पेड़ है उसको बचाना है, और उसके लिए जरूरी है कि जहाँ भी आपको ये दिखाई दे कि कोई भी पेड़ कोई काट रहा है तो तुरंत 1800 11 8600 पे कॉल करना है।
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने चाणक्यपुर स्थित बापूधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों की समस्याएं मौके पर ही सुनकर संबंधित विभागों को तय समय सीमा में समाधान के निर्देश दिए। अभियान के तहत हर रविवार शहर में पौधारोपण किया जाएगा, जिससे लोग पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी भी लेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी का एक भावनात्मक आंदोलन है, जो स्वच्छ और हरित नई दिल्ली के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। राजधानी में अंतिम छोर तक पहुंच को मजबूत करने और शहरवासियों को सुविधाजनक तथा सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराने में दिल्ली मेट्रो का बहुत योगदान है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के 32वें स्थापना दिवस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहरवासियों और मेट्रो कर्मियों को बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली मेट्रो शहर की लाइफलाइन और आधुनिकता की पहचान है। उन्होंने कहा कि मेट्रो करोड़ों लोगों के सपनों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम भी है। वहीं दिल्ली मेट्रो ने अपने 32वें स्थापना दिवस पर इसे समर्पण, उपलब्धियों और निरंतर प्रगति का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। मेट्रो रेल निगम ने कहा कि दिल्ली एनसीआर को जोड़ने में समय पालन, सुरक्षा और विश्वसनीयता इसकी प्रमुख विशेषताएं रही हैं। राजधानी में मेट्रो की सेवाएं 1995 में शुरू हुई। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हो। पंचायती राज मंत्रालय ने भी यह बताया कि कार्यशाला में राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। आकाशवाणी समाचार के व्हाट्सएप चैनल ने 1 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा हासिल कर महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्रतिदिन समाचार अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और अलर्ट उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में गंभीर रीढ़ विकृतियों के इलाज में बड़ी सफलता मिली है। एम्स ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पिछले 7 सालों में इस प्रक्रिया ने उन मरीजों में नई उम्मीद जगाई है जिन्हें पहले सर्जरी के दौरान बहुत ज्यादा जोखिम का सामना करना पड़ता था और इलाज के सीमित विकल्प थे। वर्ष 2020 में एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रकाशन में बताया गई यह तकनीक पोस्टीरियर वर्टेब्रल कॉलम रिसेक्शन का एक संशोधित रूप है। यह तकनीक सर्जरी के दौरान रीढ़ की स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है और जटिलताओं के जोखिम को कम करती है। डॉक्टरों के अनुसार जिन मरीजों को पहले सर्जरी में उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता था वे अब सफल ऑपरेशन के बाद सामान्य जीवन की ओर लौट रहे हैं। देशवासियों के बीच फिटनेस के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत नई दिल्ली में आज संडे ऑन साइकिल का 72वां संस्करण आयोजित किया गया। इस अवसर पर फिट इंडिया के निदेशक सुशांत कंडवाल मौजूद रहे। उन्होंने लोगों के साथ साइकिल चलाई और फिटनेस तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। श्री कंडवाल ने कहा कि हमारी कोशिश रहती है कि समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर चलें और इस बार हमने किसान भाइयों को अपने साथ लिया है।
हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अलग अलग समाज के जो हमारे अलग अलग जो पिलर हैं उनको हम साथ लेके चलें। इस बार हमने अन्नदाता को साथ में लिया, सारे हमारे किसान भाई जितने भी हमारे जो लोग इन्वॉल्व हैं हमें रोज का अन्न प्रोवाइड करने में, हमने उन लोगों को इस बार अपना पार्टनर बनाया। अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि हम इस मूवमेंट को इतना बड़ा कर पाए हैं कि लोग अब स्वेच्छा से आते हैं। सो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी एक बड़ी अचीवमेंट है, फिट इंडिया के लिए भी, भारत सरकार के लिए भी, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन था कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, मुझे लगता है हम बहुत सक्षम रूप से उसे पूरा कर पा रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस पर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है।
सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 1,50,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। यह प्रेस की स्वतंत्रता पहलों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। एक रिपोर्ट।
इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में यूनेस्को के 1991 में 26वें महासभा सम्मेलन में अपनाई गई एक सिफारिश के बाद की गई थी। यह अवसर प्रेस की स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांत को मान्यता और विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करने का है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता और प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस के अवसर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि तेंदुआ प्रकृति के सबसे सुंदर और शक्तिशाली वन्य जीवों में से एक है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने तेंदुआ की महत्वपूर्णता को दर्शाते हुए कहा कि उनके संरक्षण का संकल्प लेना समय की मांग है। और अब चलते चलते राजधानी के मौसम की खबर। आज दिन के समय में धूप के साथ धीमी हवा चली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं दोपहर के समय में और सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण अग्निकांड में 9 लोगों की मृत्यु। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया। दिल्ली में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ी। मुख्यमंत्री ने नई चालान निपटान प्रणाली की घोषणा की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस पर दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।